आपने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षाविद के रूप में की थी, वहां से राजनीति में कैसे आई और किस तरह इस मुकाम तक पहुंची?
तो मैं जब से स्टूडेंट थी तो काफ़ी सोशल एक्टिविज्म में इन्वॉल्व रहती थी, कई सारे मूवमेंट से जुड़ी रही। पढ़ाई लिखाई के बाद एजुकेशन की फील्ड में काम करना शुरू किया, एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया भी, कई सारी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक्स वगैरह के साथ काम भी किया। कई सालों तक रूरल मध्य प्रदेश में मैं रही भी, वहाँ पे काम किया, एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम्स, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कैसे इफेक्टिव हो सकती हैं। लेकिन इतने सालों के काम करने के बाद भी लगता था कि सारे एफर्ट के बावजूद भी कोई बहुत बड़े स्केल पे चेंज नहीं आ रहा है। दूसरी बात, हम जब गवर्नमेंट से मिलने जाते थे, कई बार बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट से मिलने जाते थे, उनसे अपॉइंटमेंट इसलिए मिल जाता था क्योंकि हमारी किसी ना किसी से जान पहचान निकल आती थी। लेकिन जब उनसे मिलते थे तो ऐसा लगता था कि वो जिनका काम है इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना, जब हमें समय देते हैं तो हम पर बहुत एहसान कर रहे होते हैं। ये दिखता था कि बहुत प्रयास के बावजूद भी चीजें एक लार्ज स्केल पे बदल नहीं गई। उसी समय की बात है जब 2011-12 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना आंदोलन के साथ वॉलंटियर करना शुरू किया, उनके लिए कुछ पॉलिसी का रिसर्च करना शुरू किया। अगर आप पूछिए ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि, एक तो ये नहीं सोचा था कि ये कोई लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, ये लगता था कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ समय इनका साथ देना चाहिए, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था इलेक्शन लड़ने के बारे में, एमएलए बनने के बारे में। पर कुछ साल आम आदमी पार्टी के साथ काम किया, जब 2015 में सरकार बनी तो तब ये बात आई कि भाई सब लोगों के ऑल हैंड्स ऑन बोर्ड चाहिए सरकार को चलाने के लिए। और तब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के साथ एज एजुकेशन एडवाइजर काम करना शुरू किया। वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई सरकार के साथ काम करने की। मैंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा 2019 में ईस्ट दिल्ली से, और फिर उसके बाद 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा, और आज मैं क्या कहें, अब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक पॉलिटिशियन हूँ, जो शायद एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी है मेरे लिए भी।
इस दौरान कई चुनौतियों का भी जाहिर आपने सामना किया होगा। क्या लगता है, महिलाओं के लिए राजनीति में आना और फिर उच्च पद तक पहुंचने के रास्ते पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कठिन है?
देखिए, महिलाओं के लिए अगर आप देखिए तो कोई भी काम पुरुषों से ज्यादा कठिन है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, ये इस समाज में इनइक्वालिटी या गैर बराबरी तो एक गिवन है। एंड कोई भी अगर कहेगा कि इस समाज में इनइक्वालिटी नहीं है तो वी आर फूलिंग अवरसेल्व्स। मैं ये कहूंगी अपने बारे में पर्सनली कि मैं शायद एक बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से रही, एक ऐसे पढ़े लिखे परिवार से रही जहाँ पे बिल्कुल लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिया गया, पढ़ाया लिखाया गया, तो उसमें मैं एक प्रिविलेज पोजिशन से रही। लेकिन अगर मैं देखती हूँ बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को, कंटेम्प्रेरीज को, जो पढ़ लिख के मेन स्ट्रीम करियर्स में भी हैं, उनको भी बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी अपेक्षा है कि चाहे लड़की या महिला कितना भी पढ़ लिख जाए, घर को संभालना, बच्चों को मैनेज करना, सब उनकी जिम्मेदारी है। तो मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे साथ कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट स्टीफंस कॉलेज, कोई ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि भाई पहले अपने करियर को अपने लॉ फर्म में, अपने इन्वेस्टमेंट बैंक में पहले पार्टनर बन जाओ, उसके बाद प्लान करेंगे कि बच्चे कब होते हैं, वरना बच्चों की वजह से 1 साल 2 साल छुट्टी ले ली तो हमारी पूरी करियर ट्रेजेक्टरी रुक जाएगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक मेन स्ट्रीम करियर में भी जहां महिलाओं के लिए इतने चैलेंजेस हैं, अगर आप पॉलिटिक्स देखिए तो पॉलिटिक्स उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन है, जो पब्लिक डोमेन में है, जो 100% 24/7 का काम है, जहां पे आप हमेशा पब्लिक आई में रहते हैं। सो डेफिनेटली इट इज मोर चैलेंजिंग फॉर वुमेन टू बी एबल टू मेक दिस चॉइस इन कंपैरिजन टू मेन।
तो जब से सोशल मीडिया का उदय हुआ है, उससे क्या लगता है आपको कि महिलाओं के लिए स्थिति और मुश्किल होती जा रही है? आपने सोशल मीडिया उत्पीड़न का सामना किया, क्या कभी ऐसे क्षण आए जब लगा कि ये सब छोड़ देना चाहिए?
सोशल मीडिया पे बहुत क्या कहें, फालतू बातें ही कह सकते हैं, और फालतू बातें, भद्दी बातें जो सोशल मीडिया पे होती हैं, आप देखिए तो ये किसी भी महिला के लिए बहुत अनयूजुअल एक्सपीरियंस नहीं है। हम गर्ल हु गोज टू स्कूल, टू वन हु गोज टू कॉलेज, टू वन हु टेक्स द बस एवरी डे टू गो टू हर वर्क प्लेस, वो तो रेगुलर डे टू डे बेसिस पे इस तरह की चीजों का सामना करती करती है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि देखिए जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से पब्लिक डोमेन के लिए ओपन कर ही रहे हैं। अगर समाज में ऐसी प्रॉब्लम्स ना होती, अगर समाज में महिलाओं का सम्मान होता, बराबरी होती, इक्वालिटी होती, हर व्यक्ति को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती हो जिसकी बैकग्राउंड से आता, तो शायद हम सबको सोशल वर्क और पॉलिटिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती।
आपको दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए जाना जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस दौरान क्या कुछ परेशानियों का, समस्याओं का भी सामना करना पड़ा?
जब 2015 में सरकार बनी, तो क्योंकि मेरा खुद एजुकेशन का बैकग्राउंड था, मैंने स्कूली शिक्षा में काम किया हुआ था, तो ये बहुत नेचुरल सी चीज हुई कि एजुकेशन में मनीष जी के साथ एज एडवाइजर काम करने की शुरुआत हुई। चैलेंजेस तो काफी थे, चैलेंजेस इसलिए थे क्योंकि एक इंट्रेंच सिस्टम होता है जिससे चीजें करी जाती हैं, एक ब्यूरोक्रेसी होती है ऊपर से नीचे तक, और सबसे बड़ा एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है कि भाई सरकारी स्कूल थोड़ी अच्छे होते हैं, सरकारी स्कूल तो फेल ही होते हैं, इन स्कूलों में जो बच्चे आते हैं इन बच्चों को पढ़ाई में कहाँ इंटरेस्ट है, इनके तो बच्चे इन्हें स्कॉलरशिप के पैसे के लिए भेजते हैं, इन बच्चों को तो मिड डे मील के लिए भेजा जाता है। सो आई वुड से ये इंट्रेंच्ड माइंडसेट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, टू चेंज द कल्चर ऑफ द स्कूल्स वाज द बिगेस्ट चैलेंज, टू मेक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिलीव कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो सकते हैं, उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, दिस वॉज द बिगेस्ट चैलेंज। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल्स 100% अच्छे हो गए हैं या उनमें कोई कमियां नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कल्चर का जो चेंज है, आई थिंक दिस चेंज वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग अबाउट, और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है।
क्या ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्या वो बेहतर राजनेता बनती हैं आपके हिसाब से?
देखिए, जो महिलाओं के साथ पॉलिटिक्स में आने का क्या एडवांटेज है कि जो महिलाओं की समस्या है, जो महिलाओं की लाइफ एक्सपीरियंसेस है, वो स्वाभाविक तौर से महिलाएं ज्यादा समझ सकती हैं कि इट इज नेचुरल कि जो खुद उस एक्सपीरियंस से गुजरा है उसकी समझने के ज्यादा चांसेस हैं। एंड नॉट जस्ट महिलाएं, मुझे तो लगता है कि कोई भी ऐसे सामाजिक वर्ग हो जो एक तरह से मार्जिनलाइज रही हैं, जिनको पर्याप्त आवाज नहीं मिली है, चाहे वो दलित हों, चाहे वो माइनॉरिटीज से हों, चाहे वो देश के ऐसे हिस्सों से हों जिन्हें ट्रेडिशनली ऐसे रीजन से हों जिनको जहाँ पे कम डेवलपमेंट हुआ है, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी उस वर्ग की आवाज एक तरह से इस देश की डिसीजन मेकिंग में पहुंचेगी।
लेकिन अभी भी राजनीति में, खासतौर पर संसद में, महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है, ये जो जेंडर गैप है इसे पाटने के लिए किस तरह के समाधानों की जरूरत है?
देखिए, जेंडर गैप सिर्फ पॉलिटिक्स में कम नहीं है, जेंडर गैप हर जगह है। कोई भी अगर आप टॉप लीडरशिप पोजिशन में देखने जाएं, तो मुझे नहीं, 50% तो बहुत दूर की बात है, मुझे नहीं लगता 15-20% भी आपको वहां पे महिलाओं की भागीदारी दिखेगी। हैविंग सेड दैट, ये भी एक अच्छी चीज है कि पिछले 10-15 साल में यहाँ पे चीजें इम्प्रूव भी हुई हैं। आज अगर आप इस देश में देखिए, कुछ साल पहले तक, 15 साल पहले तक लड़कियों को स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना, ये एक सवाल होता था। आज वो सवाल खत्म हो गया है, आज सब बच्चों को, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, उनको स्कूल भेजा जाता है। आज लड़कियों को कॉलेज भेजा जाता है, इट इज लड़कियां काम करेंगी, नौकरी करेंगी, या कोई अनयूजुअल चीज नहीं रही। तो हर फील्ड में अगर मैं देखूं, तो डेफिनेटली लड़कियां, महिलाएं आगे बढ़ी हैं, और समवेयर द बेस ऑफ दिस इज डेफिनेटली एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। जहां तक खास करके पॉलिटिक्स की अगर आप बात देखिए, तो मुझे लगता है कि किसी भी मार्जिनलाइज ग्रुप को स्पेस देने के लिए, जैसे हमने SC ST रिजर्वेशन किया हुआ है, वैसे ही मुझे लगता है कि शायद महिलाओं के लिए भी आरक्षण, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। वरना किसी भी एक मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए पॉलिटिक्स जैसी फील्ड में आगे आना आसान नहीं है, और लंबा समय लगता है उसे।
तो राजनीति में आने का विचार रखने वाली दूसरी महिलाओं के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी?
मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि जरूर आइए, पॉलिटिक्स में आइए, और यही शायद हमारे देश को, हमारे समाज को बदलने का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका है। ये नहीं है कि ये रास्ता बहुत आसान है, इसमें भी अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स में जिस स्केल पर हम चेंज लेके आ सकते हैं, वो शायद कहीं भी और संभव नहीं है।